السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ انشقاق آیہ نمبر 1 سے 13. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. ترجمہ: جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ کان لگائے ہوئے ہے اپنے رب کے حکم کے لیے اور اس کے لائق یہی ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور وہ ڈال دے گی جو کچھ اس میں ہے اور خالی ہو جائے گی، اور وہ کان لگائے ہوئے ہے اپنے رب کے لیے اور اس کے لائق بھی یہی ہے. ایک اور ترجمہ دیکھیے: جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گا اور یہی اس کا حق ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کا حکم مان لے گی اور یہی اس کا حق ہے. جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں، ہم 30ویں پارے کی تفسیر کر رہے ہیں، اور جتنی بھی صورتیں ہیں 30ویں پارے میں، یا 30واں یا 29واں پارا، یہ سب مکی صورتیں ہیں. اور مکی صورتوں کی خصوصیات ہی یہ ہیں کہ اس میں قیامت کا ذکر آپ کو بہت زیادہ کثرت سے ملے گا، اور آخرت کی یاد تازہ کروائی گئی ہے، انسان کو چونکایا گیا ہے، اسے الرٹ کیا جا رہا ہے، اسے سوچنے اور غور کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچے کہ ایک اور زندگی بھی ہے اس زندگی کے بعد. اور اکثر صورتوں کی شروعات قیامت کے ہولناک زلزلے سے ہو رہی ہے، جیسے کہ شروع سے ابھی تک آپ دیکھتے آ رہے ہوں گے. ان 5 آیات میں بھی دراصل قیامت کے زلزلے ہی کی بات کی گئی ہے، کہ جس وقت آسمان پھٹ جائے گا. اور پیچھے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، سورہ انفطار میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس وقت اس کی ہولناکی کیسی ہوگی، وہ کس قدر خطرناک وقت ہوگا، کیسا وہ سما ہوگا کہ آسمان ہی پھٹ جائے گا، یہ آسمان کی کھال ہی کھینچ لی جائے گی اور وہ دروازے ہی دروازے ہوگا. تو قیامت کا زلزلہ کوئی آسان نہیں ہوگا. جب دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں ایسے ہی آزاد پھرے گی، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. تو یہاں پر ان آیات سے مجھے اور آپ کو، ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ہم اتنے دن سے پڑھتے آ رہے ہیں، ہم 30واں پارا اکثر اپنی صورتوں میں، نماز کی جو رکعتیں ہیں اس میں لگاتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں. اتنے عرصے سے ہم یہ قرآن کی آیات، یہ صورتیں پڑھتے آ رہے ہیں، کیا کبھی ہم نے اس زلزلے کے بارے میں غور کیا، یا کبھی ہم نے فکر کی کہ اس قدر خطرناک زلزلہ قیامت کا، کہ جس وقت آسمان ہی پھٹ پڑے گا، ہمارا کیا حال ہوگا؟ انسان کی کیا حیثیت اور کیا وقت ہے؟ اور وہ بھلا کر ہی کہہ سکتا ہے، وہ تو اتنی سی جان ہے انسان، وہ تو تھوڑا سا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. انسان اتنا نازک ہے کہ اگر زمین ذرا سے ہچکولے کھانے لگے تو وہ گر پڑے اور اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکے. تو اس وقت بھلا اس کا کیا حال ہوگا؟ تو جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کا حکم مانے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور حق یہی ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے. اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے، ہمیں، میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے یہاں پر بات یہ ہے، اہم بات، کہ ہم بھی اپنے رب کا حکم اسی طرح بے چون و چرا مانیں جس طرح کائنات کی تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے. ہم بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگائیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں مسلسل لگے رہے ہیں، مسلسل اطاعت، مسلسل فرما برداری. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، تم مسلمان ہو. یعنی آپ کو زندگی کے ہر لمحے، ہر سانس کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہنی ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا بھائی آج تو میں بہت تھک گئی، اب کل مجھے فرما برداری کی ضرورت نہیں ہے، ایک دن میں چھٹی لے لیتا ہوں. نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا میں مسلسل 1 مہینے سے کام کر رہی تھی فرما برداری کے کام، اب میں آرام سے چھٹی لے لیتی ہوں 1 مہینہ. نہیں، मुसलसल 24 घंटे, हफ्ते के पूरे 7 दिन, दिन के पूरे 24 घंटे, साल के पूरे 365 दिन, उसको मुसलसल अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में लगे रहना है, मुसलसल इताअत करते रहनी है, क्योंकि कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म की ताबे है, हर चीज़ इताअत कर रही है बग़ैर किसी हिचकिचाहट के और बग़ैर किसी नाफरमानी के। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अल्लाह ताला का हुक्म माने। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर लफ्ज़ आया है कि अज़िन अल्लाह, कि इसके मानी होते हैं कि किसी हुक्म या बात पर कान लगाना या तवज्जो से सुनना, ताकि फ़ौरन उस हुक्म की तामील की जाए। और ये बात भी याद रहनी चाहिए कि इसमें जिन और इंस के अलावा अल्लाह ताला ने इस कायनात की तमाम जो भी चीज़ पैदा की है उनको अल्लाह ताला जो भी हुक्म देता है वो हर वक्त तैयार रहती है अल्लाह ताला के हुक्म के आगे। सिर्फ इंसान को और जिनों को ही इख्तियार दिया गया है इरादे का, और इसी बिना पर हम देखते हैं कि वो अल्लाह ताला के हुक्म से सरताबी भी करते रहते हैं। लेकिन उसके अलावा जितनी चीज़ें दुनिया में अल्लाह ताला ने पैदा की है वो सब की सब अल्लाह ताला की इताअत कर रही हैं। तो जब आसमान को हुक्म दिया जाएगा कि फट जाए तो वो फट जाएगा, और वो बग़ैर किसी हिचकिचाहट के हुक्म मान लेगा और फ़ौरन फट पड़ेगा। ये इताअत है असल में। और फिर यहाँ पर ज़मीन को लंबा करने की बात की गई कि वह इज़ल अर्दु मुद्दत, ज़मीन फैला दी जाएगी और बढ़ा दी जाएगी। अब ये बात हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने वैसे तो ज़मीन को फैला दिया है, यानी ज़मीन को हमारे लिए अल्लाह ताला ने इसी तरह से ऐसे बनाया है कि हम उस पर चल फिर सकते हैं, अपने घर बना सकते हैं। तो मुद्दत के जो मानी होते हैं किसी चीज़ को लंबाई में खींच कर फैलाना और उसे लंबा कर देना, जैसे अल्लाह ताला ने सायों को लंबा किया है या बादलों को लंबा किया है या फैलाता है अल्लाह ताला बादल को। तब यहाँ पर ज़मीन को खींच कर लंबी कर दिया जाएगा या चटियल मैदान बना दिया जाएगा, या ऑलरेडी अल्लाह ताला ने ज़मीन को फैला कर बनाया है, हो सकता है उस दिन ये होगा कि समंदर सारे जो खुश्क हो जाएंगे वो भी ज़मीन बन जाएंगे, जितने ज़मीन पर चीज़ें थी पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, मकान ढा दिए जाएंगे और ज़मीन बिल्कुल चटियल मैदान होगी, और इस यानी ज़मीन की जो चौड़ाई है या लंबाई है वो खूब बड़ी हो जाएगी। और क्यों होगा ये सब? क्योंकि जब से आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया है, ज़मीन पर भेजा गया है, जब से लेकर तमाम क़यामत तक के आने वाले इंसान, हर कोई वहाँ जमा होगा, जिन और इंस तमाम जानवर वहाँ जमा होंगे इसी ज़मीन पर, और हर एक को वहाँ पर इकट्ठा कर दिया जाएगा। और हो सकता है यही ज़मीन मैदान हश्र बना दी जाए, और ये भी मुमकिन है कि अल्लाह ताला इसके अलावा कोई और ज़मीन ले आए, जैसे कि अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाता है यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरुल अर्द, कि उस दिन ज़मीन बदल दी जाएगी दूसरी ज़मीन से। तो बहरहाल क़यामत के दिन बड़े बड़े जो आज हमको सितारे सैारे नज़र आते हैं उनमें सब चेंजेस आ जाएंगे, और अल्लाह ताला ने उसी की यहाँ पर यानी जो शक्ल हो जाएगी या उसके बारे में बताया है कि आसमान जब फट जाएगा और फट कर एक दूसरे से अलग हो जाएगा, सितारे बिखर जाएंगे, सूरज और चाँद बेनूर हो जाएंगे, और वह अपने रब के हुक्म को मानेंगे, और उनको हक यही है कि वो अपने रब के हुक्म को माने, क्योंकि तमाम कायनात की हर चीज़ ज़र्रा ज़र्रा से वाकिफ़ है कि उस अजीम रब, उस अजीम मालिक के दस्ते कुदरत में सब कुछ है, उसी ने हर चीज़ को मुसख़र कर रखा है, और वो तमाम कायनात का मुदब्बिर है, तन्हा मालिक और हुक्मरान है। उसके हुक्म की नाफरमानी नहीं की जा सकती, उसके फ़ैसले की मुखालफत नहीं की जा सकती, लिहाजा जब अल्लाह ताला हुक्म देगा तो हर चीज़ उसका हुक्म मानेगी, और ज़मीन कांपेगी, डर जाएगी, उसके पहाड़ रेजा रेजा होंगे, और इमारतें या सब जो अलामतें हैं सब ढा दी जाएंगी, उसको हमवार और बराबर कर दिया जाएगा, और अल्लाह ताला इस तरह ज़मीन को फैला देगा जिसकी वजह से वो बहुत वसी हो जाएगी, और हर कोई अल्लाह ताला के हुजूर हिसाब किताब के लिए खड़े होंगे, और लोगों की इतनी कसरत होने के बावजूद भी ये ज़मीन पर वो समा जाएंगे, और तिल धरने की जगह ना होगी, गुंजाइश ना होगी, और कहीं इस ज़मीन पर कोई नशे व फराज नज़र नहीं आएंगे, और जो कुछ इसके अंदर है ज़मीन में वो सब निकाल कर वो बाहर डाल देगी। वह अलक़त माफ़ीहा व तखलत, कि ज़मीन खाली हो जाएगी, सब निकाल कर बाहर डाल देगी, जो कुछ ख़जाने इसके अंदर दफन है। तो क्या क्या ख़जाने ज़मीन के अंदर दफन है हम सब जानते हैं। इस ज़मीन में शुरू से लेकर आखिर तक जितने मरने वाले इंसान हैं, चाहे उन्हें दफन किया गया हो, चाहे उन्हें जलाया गया हो, जो कुछ भी ज़मीन के अंदर दफन है सारे अपने दफीने सारे ख़जाने वो बाहर निकाल देगी, चाहे वो इंसान हो, मुर्दे हों, चाहे वो जानदार हों, जानवर हों, या फिर कोई मादनियात हो, सोना चांदी हीरे जवाहरात, जो कुछ भी है ज़मीन के अंदर वो सब बाहर निकाल कर जमा कर दिया जाएगा, और सारे के सारे लोग वहाँ पर जमा होंगे, किसी की कोई यानी कुछ बात करने की मजाल ना होगी। तो बहरहाल वो बाहर निकाल कर डाल देगी और वो खाली हो जाएगी, क्योंकि जब सूर फूंका जाएगा तो तमाम मुर्दे कब्रों से निकल कर ज़मीन पर आ जाएंगे। ज़मीन अपने ख़जानों को बाहर निकालेगी और एक बहुत बड़े सुतून के मानिन होंगे जिनका लोग मुशाहिदा करेंगे, मखलूक मुशाहिदा करेगी। बहरहाल उस वक्त लोग अफसोस और हसरत का शिकार होंगे और अफसोस करेंगे कि काश हमने पहले कुछ और नेक आमल क्यों ना कर लिए। तो बहरहाल इससे एक क़यामत की हौलनाकी बयान की गई है। और जो जो कुछ शहादतें हैं, बाज़ मुफस्सरीन ये भी लिखते हैं कि ज़मीन के अंदर जितने मुर्दे हैं वो सब कुछ बाहर आ जाएगा, जो ख़जाने हैं वो सब कुछ बाहर आ जाएंगे, यहाँ तक कि जो शहादतें हैं ज़मीन के अंदर, जिन लोगों ने शहादतों को छुपा दिया था, जो क़राइन थे जो छुपाए गए थे, वो सब के सब बाहर आ जाएंगे और कोई चीज़ छुपी हुई और दबी हुई ना रहेगी और इंसान अफसोस करेगा उस वक्त। अल्लाह ताला हमको उस वक्त की मुश्किल से महफूज रखे। तो चाहे जो भी कुछ हो ज़मीन के अंदर, वो सब का सब बाहर आ जाएगा और ज़मीन के अंदर कुछ बाकी ना रहेगा। तो इन पांचों आयात से हमें ये बात सीखने को मिली कि हमें जो भी कुछ करना है इस दुनिया में, ऐसे काम करें कि कल ऐसा ना हो कि हमारी कोई छुपी हुई गवाही बाहर निकल आए जो हमें शर्मिंदा कर दे मैदान हश्र में, या कोई ऐसा काम हो या कोई ऐसी बात हो जो हम लोगों के सामने जिसकी वजह से शर्मिंदा हो जाएं। तो ऐसे तमाम आमाल से हमें तौबा करनी चाहिए और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए और पलटना चाहिए। आयत नंबर 6 देखते हैं। या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकीह। बहुत ही खूबसूरत, बहुत अहम और बहुत याद दहानी वाली आयत है। ए इंसान, बिलाशुबा तू सख्त मेहनत कर रहा है अपने रब की तरफ, खूब मेहनत, सो तो उसको मिलने वाला है, यानी तो रब से मिलने वाला है। बस लेकिन जो शख्स के दिया गया वो अपना आमाल नामा अपने दाएं हाथ में, तो अनकरीब उसे आसान हिसाब लिया जाएगा। ये अगली आयत की तशरीह हम बाद में करेंगे, हम अभी सिर्फ आयत नंबर 6 की तशरीह करते हैं। एक और तर्जुमा देख लीजिए। ए इंसान, तो तकलीफ़ सह सह कर कुशा कुशा अपने रब की तरफ जा रहा है, फिर तो उससे मिलने वाला है। यहाँ पर जो लफ्ज़ आया है, इन्नका कादिहुन इला रब्बी का कदहन फमुलाकी, कादिहुन और कदहन, दो दफ़ा ये लफ्ज़ आया है। कदहन, अगर हम ये लफ्ज़ देखते हैं इसके मानी पर हम गौर व फ़िक्र करें, जैसे कि मुतरादिफ़ातुल क़ुरान और मुफ़रिदातुल क़ुरान में हर लफ्ज़ के स्पेशल मानी दिए गए हैं जो उस ज़माने में इस्तेमाल होते थे, जिन मानों में वो लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, ज़माने जाहिलियत में, फिर ज़माने इस्लाम में वो लफ्ज़ किन मानों में इस्तेमाल होने लगा और क्या क्या मानी उसके बन सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो लुग़वी मानी बताया गया है, कदहन या कदहा, इसके मानी होते हैं बहुत मेहनत करना, तकलीफ़ें सह सह कर काम करना, बमुशक्क़त कोई काम करते जाना, यानी बहुत ज़्यादा मुशक्क़त वाले कामों के लिए लफ्ज़ आता है। और कहा जाता है कि इसीलिए जो मैदा होता है इंसान के जिस्म में, जैसे आपको मालूम होगा कि वो 24 घंटे काम करता रहता है, कभी वो रुकता नहीं है, थकता नहीं है, और कई फैक्ट्रियों के बराबर वो काम करता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए इंसान, तो बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त करने वाला है। पूरी ज़िंदगी अगर इंसान की हम देखें तो पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल पर डिपेंड है। इंसान को दो वक्त के खाने के लिए आप देखें कितनी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती है। बचपन से लेकर जवानी तक बच्चे पढ़ते हैं या फिर कोई मेहनत मजदूरी के काम सीखते हैं, कोई स्किल सीखते हैं ताकि वो अपना खर्च चला सकें या ज़िंदा रहने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए कमा सकें। तो अगर हम सब अपनी ज़िंदगी पर गौर करें तो देखा जाए तो पूरी ज़िंदगी मेहनत और मशक्क़त वाली ज़िंदगी है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंसान तकलीफ़ें सहता है, मशक्क़त के काम करता है, चाहे वो दुनिया के लिए हो चाहे वो आखरत के लिए। तो असल में उसकी मेहनत कहाँ के लिए होनी चाहिए? कादिहुन काफ से है, उसकी जो मेहनत है उसका रुख है किस तरफ होना चाहिए, या वो ऐसे क्या काम करे जिसकी वजह से उसका रुख सही समत में हो और उसकी सारी कोशिशें अल्लाह ताला के नज़दीक काबिल कबूल ठहरें। तो ए इंसान, तो अपने रब से मिलने तक ये कोशिश और तमाम काम और मेहनतें करके उससे मुलाकात करने वाला है, यानी तुम अल्लाह ताला की तरफ जाने में कोशा हो, तुम चले जा रहे हो सीधा उसकी तरफ, उसके जो अहकामात हैं, उसके जो मनाहियात हैं, तुम उस पर अमल करते हो, भलाई के ज़रिए से या बुराई के ज़रिए से उसके करीब हो रहे हो। यानी कोई इंसान अगर अल्लाह ताला की नाफरमानी में ज़िंदगी गुजार रहा है तो भी वो अल्लाह ताला से करीब हो रहा है, यानी धीरे धीरे उसकी मौत का वक्त करीब आता ही जा रहा है, उसको एक दिन अपने रब से मिलना है और उसको जवाब देना है सारे आमल का। और अगर कोई शख्स अपनी पूरी ज़िंदगी नेक आमल के साथ बसर कर रहा हो, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में बसर कर रहा हो, तो भी वो अल्लाह ताला से मुलाकात के करीब होता जा रहा है, यानी तुम ज़रूर एक दिन अल्लाह ताला से मुलाकात करोगे। बस अगर तुम चाहते हो कि तुमको वहाँ पर अल्लाह ताला के पास अच्छा बदला मिले या तुम्हारे आमाल की अच्छी जज़ा मिले, तो तुम कामयाब ठहरोगे। तुम्हारी कोशिशें, तुम्हारी जो मेहनत है, जद्दोजहद है, जो स्ट्रगल है, वो रायगा नहीं जाएगी। अब देखिए, एक शख्स है जो मेहनत और मशक्क़त करता है, एक शख्स है जिसकी नीयत भी सही है। जैसे किसी ने, कोई किसान है, उसने खेत को सींचा, ज़मीन को सींचा, पहले वहाँ की सफाई करता रहा, जो झाड़ झंकार थी, जो जंगली वहाँ पर झाड़ वगैरह थे उसको निकाला, उसको साफ़ किया, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से ज़मीन को सींचा, फिर उसके अंदर बीज डाला। अब अगर इतनी सारी मेहनत उसने की लेकिन उसने बीज को देखा ही नहीं कि बीज कैसे मैं लाया हूँ, उसने ज़मीन पर पूरी मेहनत की, खेत को सींचता रहा, ज़मीन को सींचता रहा, उसको पानी भी बराबर देता रहा, उसकी देख रेख करता रहा, उसको कीड़े मकोड़ों से बचाता रहा, जानवरों से बचाता रहा, सब कुछ करता रहा फसल आने तक। लेकिन जब फसल आने का वक्त आया तो उसको पता चला कि अच्छा, वो जो सारे मैंने बीज डाला था वो बीज ही सारे ख़राब थे। तो अब आप बताइए कि उसका, उसकी पेशेमानी का, उसके झिंझलाहट का, उसकी हसरत और यास का क्या आलम होगा कि इतने महीनों से जिस काम पर वो लगा हुआ था और जिसके पीछे वो अपना सब कुछ लगा रहा था, धूप सर्दी गर्मी में आपने देखा होगा कि किसान किसी चीज़ की परवाह नहीं करते हैं, कितनी भी बारिश हो, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, वो अपने खेत की फसल की देख रेख के लिए मुसलसल लगे रहते हैं। और इसी बिना पर आप देखें कि किसान को जो दहकान कहा गया ना, यानी बहुत मशक्क़त वाला होता है किसान, वो गर्मी और सर्दी को सबको बर्दाश्त करता है, और इसीलिए आप देखें उसकी स्किन जो है रेड हो जाती है धूप से, कि वो मुसलसल धूप में भी काम में लगा रहता है, वो अपने खेत की फसलों की रखवाली के लिए मुसलसल कोशिश करता रहता है। तो इतनी मेहनत और मशक्क़त करने के बाद भी उसको पता चलता है कि अच्छा, जो बीज लगाया था मेरा वही, वो बीज ही ख़राब था और मेरी फसल नहीं आएगी। अब आप बताइए कि क्या उसका हाल होगा। और एक दूसरा शख्स था जिसने भी सेम मेहनत की, लेकिन उसने बीज डालते वक्त बीज को देख लिया और उसका ख्याल किया कि मैं सही बीज डाल रहा हूँ या नहीं डाल रहा हूँ। आप सोचिए कि जब फसल आएगी तो वो कितना खुश होगा। तो बस यही है, मेरा और आपका हाल भी यही होना चाहिए कि हमारी सारी ज़िंदगी की जो तगोदौ है, जो भाग दौड़ है, जो मेहनत है, जो कोशिशें हैं, जो मशक्क़तें हम उठा रहे हैं, जो जद्दोजहद हम कर रहे हैं, पांच वक्त की नमाज़ सारे लोग पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी पांच वक्त की नमाज़ मुनाफिकीन भी पढ़ते थे, लेकिन मुनाफिकीन की सारी तगोदौ क्यों रायगा गई, क्यों बेकार ठहरी उनकी सारी मेहनतें मशक्क़तें, वो है ना कि ज़िंदगी जोहद मुसलसल है, लेकिन वो बेफ़ायदा ठहरी अगर वो अल्लाह की खातिर नहीं थी। तो मुनाफिकी ने भी सारी कोशिशें की थी लेकिन उनका सारा कुछ किया धरा उनका आखिरत में कुछ उसका फ़ायदा नहीं देगा उनको। तो इसी तरह से जब हम दुनिया में ज़िंदगी जी ही रहे हैं, हम भी जी रहे हैं और दूसरे लोग भी जी रहे हैं ज़िंदगी, एक काफिर है वो भी मेहनत करता है, एक मुशरिक है वो भी मशक्क़त उठाता है, वो भी पूरी ज़िंदगी अपनी लगा देता है स्ट्रगल में, लेकिन आप देखिए कि आखिरत में उसके हाथ में कुछ, सॉरी, आखिरत में उसके हाथों कुछ नहीं आएगा, वो नाकाम और नामुराद ठहरेगा। लेकिन मैं और आप सिर्फ़ और सिर्फ ईमान की वजह से और इस हमारी अच्छी नीयत की वजह से, हमारे खलूस की वजह से, अखलास की वजह से, अल्लाह ताला हमारी उसी जद्दोजहद को जो काफिरों ने भी की थी लेकिन वो नाकाबिल कबूल ठहरी, और हमने भी की थी लेकिन हमारी काबिल कबूल ठहरेंगी, क्यों, क्योंकि हमारे ईमान और अखलास की वजह से। तो ये जो हमारी ज़िंदगी की जद्दोजहद है, जो हमारी मशक्क़तें हैं, हमको इसको सही रुख पर लगाना चाहिए। जीते तो सभी लोग हैं, अब देखिए ज़िंदगी तो सभी की गुजर जाएगी, लेकिन अगर वो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में नहीं गुजरी, सही रुख पर नहीं गुजरी ज़िंदगी, सही काम करते हुए नहीं गुजरी, तो फिर उस ज़िंदगी का फ़ायदा क्या, क्योंकि उसके बदले में आखिरत में आपको फिर कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक हिम्मत, एक ताकत, एक जज्बा रख दिया है, उसके अंदर एक अज़्म होता है, एक हौसला होता है, और इंसान के अंदर पहाड़ों को सर करने की अल्लाह ताला ने ताकत रख दी है, वो चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कि अगर इंसान के अंदर एक हिम्मत पैदा हो जाए, एक जोश, एक वलवला आ जाए, तो आप देखें उसने पहाड़ की चोटियों को भी सर कर लिया माशाल्लाह, क्या कुछ नहीं किया इंसान ने, चांद पर कमंदें डाल दी, इवन वो कहाँ कहाँ मार्स तक पहुँच गया। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को कैसा दिमाग, कैसा जज्बा और कैसी हिम्मत दी है और कैसा अज़्म दिया है। तो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर हिम्मत और ताकत रखी है, चाहे तो इंसान उसे दुनिया के लिए इस्तेमाल करे, चाहे तो आखिरत के लिए। और आप देखिए दुनिया तो हर हाल में गुजर ही जाएगी, इसकी मिसाल आप ऐसा समझिए कि आपको सफ़र करना ही है, आपको गुजर नहीं है, आपका घर है। ऐसा समझे कि जो आपका बेडरूम का दरवाज़ा है वो दुनिया है और जो आपका मेन गेट है वो आखरत है। अब आपको मेन गेट तक पहुंचने के लिए बेडरूम के डोर से गुजरना ही पड़ेगा, तो क्यों ना फिर हम अपना टारगेट मेन गेट को रखें, क्योंकि बेडरूम की डोर से तो आपको गुजरना है, जो अंदर वाला डोर है उससे तो आपको गुजरना है। अगर हम आखरत पर तवज्जो रखते हैं, आखरत पर निगाह रखते हैं, आखरत की कामयाबी को मंजिल मकसूद बनाते हैं और हमारा नस्बुल एन आखरत हो, तो दुनिया तो अल्लाह ताला हमको दे ही देगा जितनी देना है। जैसे कि हदीस के मफहूम से पता चलता है कि जो लोग सिर्फ दुनिया के लिए जद्दोजहद करते हैं उनको वो अपनी नाक तक रगड़ लेते हैं दुनिया हासिल करने के लिए, इतनी मेहनत और जद्दोजहद करते हैं, लेकिन उनको मिलती उतनी है जितना उनकी किस्मत में लिखा होता है। और जो आखरत के लिए कोशिश करता है तो उनको भी उतना ही मिलता है जितना उनके लिए लिखा होता है, लेकिन उसकी आखरत कामयाब हो जाती है। यानी मिलेगा उनको भी उतना ही, लेकिन उनकी आखरत की कोशिश करने की वजह से उनकी दुनिया भी आसान कर देता है अल्लाह ताला, और आखरत तो कामयाब होगी ही होगी इंशाल्लाह उनकी, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की खातिर किया था। तो हमारी नज़र किस पर हो? आखरत पर हो। अब यहाँ जो बात बताई गई है थोड़ा सा गौर करने के काबिल है कि इंसान के दिल में हज़ारों ख्वाहिशें होती हैं, कभी एक ख्वाहिश पूरी होती है तो फिर उसके अंदर ये जज्बा होता है कि दूसरी ख्वाहिश पर वो काम करता है, फिर वो दूसरी ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो वो तीसरी ख्वाहिश के पीछे पड़ जाता है। इन उसके दिल में ख्वाहिशें, आरज़ूएं और उमंगें जन्म लेती रहती हैं। फिर पहली ख्वाहिश की तकमील जब पूरी हो जाती है तो वो बाद वाली ख्वाहिश की तकमील के लिए हिम्मत बांध लेता है, कमर बांध लेता है, और फिर देखें उसकी हिम्मत ऐसी होती है कि वो करता रहता है, और इस तरह पूरी ज़िंदगी उसकी गुजर जाती है। हाँ, लेकिन अगर उसकी ख्वाहिशात नेक नियति पर मबनी थी, आखरत के लिए थी, सही रुख पर थी, तो यकीन जानिए कि उसको दुनिया भी मिल गई और आखरत में भी कामयाबी उसको मिलेगी। लेकिन अगर एक शख्स ऐसा है कि जो सारी मेहनत और जद्दोजहद सिर्फ दुनिया के लिए करता रहा, तो खसरत दुनिया वल आखरा, उसकी दुनिया भी बर्बाद हुई और उसकी आखरत भी बर्बाद हुई। तो जो अल्लाह ताला का फरमाबरदार बंदा होता है वो फूंक फूंक कर कदम रखता है, उसको मालूम है कि मुझे अपनी मेहनत, अपनी कोशिश, अपनी जद्दोजहद, अपनी हिम्मत, अपने अज़्म को मुझे सही रास्ते पर लगाना है। हालांकि ज़िंदगी गुजारने के लिए तो मुझे मेहनत वैसे भी करनी है, लेकिन मुझे अपना टारगेट, अपना नज़बुल ऐन क्या रखना है? अल्लाह ताला की रज़ामंदी। क्यों? क्योंकि उससे क्या करना है? फ़मुलाक़ी, रब से मुलाकात, उसको अपने रब से मुलाकात करनी। तो ये रब से मुलाकात उसको ज़िंदगी गुजारने का सही ढंग और सही तरीका बता देती है। जब इंसान अपने रब से मुलाकात को याद रखता है तो फिर वो कॉन्शियसली ज़िंदगी गुजारता है, वो अलर्ट रहकर ज़िंदगी गुजारता है, वो अल्लाह से डर कर तकवा वाली ज़िंदगी गुजारता है, और फूंक फूंक कर कदम रखता है कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। और इसकी मिसाल हमें सहाबा कराम की ज़िंदगी से मिल जाती है कि सहाबा कराम ने देखें कि पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद की, अपनी जमा पूंजी, अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ लगा दिया, यहाँ तक कि अपने वतन से हिजरत कर ली, अपनी ज़मीन को, अपने घर बार को छोड़ दिया, अपना सब कुछ लगा दिया, कुर्बानियाँ दी, घर बार छोड़े। आप बताइए कामयाब ठहरे नहीं ठहरे? माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हुआ, रदी अल्लाह अन्हुम, कि अल्लाह उनसे राज़ी हुआ। तो जब ये बात हमारी समझ में आ जाए कि हमको ज़िंदगी को कैसे गुजारनी है जिससे हमारी आखरत कामयाब हो जाए, तो समझ लीजिए कि वो इंसान बहुत समझदार और कामयाब इंसान है। और जो सारी तगोदो और भाग दौड़ सिर्फ दुनिया के लिए करता है, समझे वो नादान है। तो अब क्यों ना हम जब आखरत, यानी दुनिया में हमको भेजा ही गया है कि हम आखरत के लिए आमाल नामा तैयार करें और आखरत का तोशा तैयार करें, तो फिर हमारी सारी भागदौड़ और जद्दोजहद आखरत के लिए होनी चाहिए, और फिर उसके लिए हमें जो लगाना हो लगा दें। कोई इन्हें डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज अल्लाह के रास्ते में माल देना पड़े, अल्लाह के रास्ते में जान देनी पड़े, अल्लाह के रास्ते में बहुत सारी ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़े, कोई बात नहीं। और क्या कुर्बान करना पड़ता है? सिर्फ रस्म रिवाज। आप देखिए, आज यही होता है ना कि जैसे हम बात करते रहते कि तकरीरें तो बहुत होती है, लेकिन हम रस्म रिवाज नहीं छोड़ पाते। चाहे हमारी शादियां हों, चाहे हमारे पैदाइश के, बच्चों के पैदाइश वाले मामलात हों, चाहे मरने वाले मामलात हों, तो ये रसूमात हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो क्यों नहीं छोड़ते हम दुनिया वालों से डरते हैं? अपनी छोटी सी ख्वाहिशत, आर्ज़ों और उमंगों के लिए हम अल्लाह ताला की नफरमानी मोल ले लेते हैं। अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए कि ये दुनिया तो ख़त्म हो जानी है, ये दुनिया तो फ़ानी दुनिया है और इसकी ख्वाहिशत बहुत छोटी सी हैं और आखरत बड़ी तवील है, लिहाजा उसके लिए कोशिश करें, तो फिर इंसान कुछ भी लगाते हुए डरता नहीं है। क्या था आखिर कि अबू बकर सिद्दीक ने सब कुछ लगा दिया, पूरा माल लगा दिया, गज़वे तबुक में सब कुछ लेकर आ गए, कुछ कहा कि क्या छोड़ा आए हो पीछे घर वालों के लिए? कहा कि अल्लाह और उसका रसूल बस। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपना आधा सामान लेकर आए, अब्दुलरहमान बिन औफ़ ने 10,000 लश्कर का सामान मुहैया कर दिया। मक्का में उनके इतने बड़े बड़े घर थे कि अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कि ज़ैनब बिन्त जहश के भाई थे और आपके फूफीजद भाई थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जब उनको पता चला कि मक्का में उनका इतना बड़ा घर था उसके ऊपर अबू सुफियान ने कब्ज़ा कर लिया है, तो वो अफसरदा होकर आए रसूलुल्लाह के पास कि या रसूलुल्लाह हमारे घर पर फ़लाँ फ़लाँ ने कब्ज़ा कर लिया है। तकलीफ़ होती है ना अगर आपको पता चले कि आपके घर पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया है और आपको सिर्फ अल्लाह की खातिर छोड़ आए थे वो घर, अपना वतन सब कुछ। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ए अब्दुल्ला, क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में इससे बड़ा घर अता फरमा देगा? तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं या रसूलुल्लाह, और फिर बग़ैर कुछ कहे उठकर चले गए। ये थे सहाबा, तो उनको मालूम था कि जो कुछ हम लगा रहे हैं और जहाँ लगा रहे हैं उसका हमको बदला कई गुना बढ़कर मिलने वाला है। जैसे किसी ने खूब कहा था ना कि जो चाहो लगा दो डर कैसा, ये बाजी इश्क की बाजी है, गर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। सुभान अल्लाह, यानी एक गाजी जब अल्लाह के रास्ते में जाता है तो अपनी जान भी लगा देता है, और अगर जान नहीं जाती है तो वो गाजी बनकर लौट कर आता है माशाल्लाह। हालांकि इश्क का लफ्ज़ काबिले कबूल नहीं है, ये कोई इस्लामी टर्म नहीं है, नापसंदीदा लफ्ज़ है ये, और हम इसे इस्तेमाल भी नहीं करते हैं बहरहाल। लेकिन यहाँ पर एक है, जो भी आप लगा देंगे अल्लाह ताला की मोहब्बत में तो लगा दीजिए, ये बाजी ऐसी है अगर आप लगाते हैं अल्लाह ताला के रास्ते में, अगर दुनिया में आप समझे हार भी जाते हैं तो ऐसा समझे कि ये बहुत बड़ी जीत है, ये आखिरत की जीत है। और इसीलिए हमारे जितने असलाब गुजरे हैं उन लोगों ने इसके बारे में बहुत हमें बहुत अच्छी अच्छी नसीहतें कर गए हैं कि इंसान को चाहिए कि वो अपना सब कुछ जो फोकस है वो आखिरत पर रखे। तो जहाँ कहीं हम हो जद्दोजहद करें, कोशिश करें अहसन अमल की। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कहते हैं कि इस आयत का क्या मतलब है कि इंसान अहसन अमल करे, और अहसन अमल के लिए वो हर मुमकिन कोशिश जद्दोजहद करता रहे जहाँ कहीं पर भी हो। और फिर उसको क्या बात अपने जहन में रखना चाहिए, इमाम बुखारी का कहना है कि एक दिन उसे अपने मालिक के सामने हाज़िरी देनी है, उसको अपने मालिक से मुलाकात करनी है, उसके दिल में अल्लाह ताला से मुलाकात का शौक़ हो। जब अल्लाह ताला से मुलाकात का शौक़ होगा तो ये चीज़ उसके अमल में तेज़ी पैदा कर देती है, और फिर वो अपने अमल में नेक अमल में तेज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे इस नेक अमल की जज़ा अल्लाह ताला ही दे सकता है, किसी और के अख्तियार में है ही नहीं। मेरे इस नेक अमल की तारीफ अल्लाह सुबहानहु तआला ही कर सकता है, कोई इंसान के बस की बात ही नहीं है कि वो इस नेक अमल की तारीफ़ करे। तो बहरहाल वो जद्दोजहद करे, स्ट्रगल करे जन्नत के लिए, जहन्नुम से दूर हटने के लिए जितना हो सकता कोशिश करता रहे। अब देखिए, एक इंसान घर बनाते हैं ना, आपने देखा होगा कि हमारी ज़िंदगी का आजकल मकसद क्या है। जो हम जैसे लोग हैं, आपने देखा होगा कि जो दुनिया भी गुजारना चाहते हैं और दीन की तरफ भी मायल हैं, और जो लोग रिटायर्ड लाइफ गुजारते हैं, जो जॉब पर हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी का मकसद क्या होता है? 90% लोगों के बस वो चाहते कि बस आखिर में हम जब रिटायर्ड लाइफ गुजारें तो हमारा एक अपना घर हो, खुद का मकान हो। हम किराए के घर को नापसंद करते हैं ना, हमारी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी हम क्या करते हैं, आखिर वक्त में, आखिरी उम्र में घर बनाने में लगा देते हैं। तो क्या वो एक घर बना लेना ये कामयाबी है हम समझते हैं? क्या वो एक हमारा खूबसूरत सा पुरसकून सा घर हो, अगर वो घर बन गए तो क्या उसके बाद हमें पता है कि हम कामयाब हो गए? नहीं पता है, क्योंकि असल कामयाबी तो हमारे आखिरत में हिसाब किताब पर डिपेंड है कि हमारा वहाँ हिसाब किताब कैसे होता है, हमें नामा आमाल किस हाथ में मिलता है, और क्या अल्लाह ताला हमसे राज़ी है। तो घर बनाना कामयाबी नहीं है, इंसान सारी ज़िंदगी की कमाई लगा देता है तो ये कामयाबी असल कामयाबी नहीं है। एक बहुत अच्छी कहानी हम लोगों को थी शुरू की क्लासेस में, जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, उर्दू की किताब में थी एक कहानी, और यही थी कि इंसान किस तरह से दुनिया के पीछे भागता है और आखिर में उसको कितनी ज़मीन चाहिए। वही 2 गज़ ज़मीन या इस तरह से कुछ टाइटल था, उसका भी याद नहीं आ रहा है, कि एक गवर्नर, स्टेट का गवर्नर ऐलान करता है कि जो सुबह से फजर से लेकर मग़रिब का सूरज ग़ुरूब होने तक जिस कदर तेज़ी से दूर तक जाएगा और वापस यहीं आ जाएगा तो उसको उतनी पूरी ज़मीन उसके नाम अलॉट कर दी जाएगी। कह रहे थे कई लोग आए और कई लोग डर के मारे बहुत बहुत थोड़ी सी दूर जाकर वापस आ गए, तकरीबन सारे लोग वापस आ गए इस डर से कि कहीं वापस ना पहुंच सके, क्योंकि अगर वापस नहीं पहुंचते थे मगरिब से यानी सूरज ग़ुरूब होने के वक्त तक तो सब कुछ बेकार चले जाना था। कह रहे थे कि एक शख्स दौड़ता रहा, सारे लोग हैरान थे कि कितनी दूर जा रहे हैं, कि वापस आ सकेगा या नहीं आ सकेगा। वो घोड़े पर बैठ कर दौड़ लगाता रहा, यहाँ तक कि कहा जाता है कि शाम होने के करीब आ गई, लेकिन उसके बाद वो इतनी तेज़ी से घोड़े पर सवारी करता हुआ वापस आया कि लेकिन आखिरकार फिर ऐसा हुआ कि उसका घोड़ा भी बेदम हो गया, और जब वो वापस पहुंचा तो सूरज ग़ुरूब हो रहा था, यानी वो अपने वक्त पर बराबर वापस आ गया, लेकिन उसने बहुत दूर तक ज़मीन ले ली थी, यानी बहुत दूर तक चला गया था वो। लेकिन जैसे ही वो वापस पहुँचा तो वो ख़ुद भी बेदम होकर गिर पड़ा और उसका घोड़ा भी बेदम होकर गिर पड़ा, और जब देखा गया तो उस वो आदमी की जान निकल चुकी थी और उसको जो ज़मीन उसकी नापी गई कि कितनी दूर तक वो गया था तो कई हज़ार किलोमीटर की ज़मीन तक हो गया था और वो ज़मीन उसके नाम कर दी गई। लेकिन जब उसको दफन किया गया तो आपको मालूम है कि दफन करने के लिए कितनी ज़मीन लगती है, कि इंसान की हाइट कितनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 फिट 7 फिट, 7 फिट ज़मीन के लिए, जिसको हम 2 गज़ ज़मीन कहते हैं ना, कि 2 गज़ ज़मीन के लिए इतनी भाग दौड़, इतना दूर तक वो गया आदमी। तो हम दुनिया हासिल करने के लिए, दुनिया की ज़मीन हासिल करने के लिए कितनी भाग दौड़ करते हैं ना, कितनी मेहनत और मशक्क़त करते हैं, कितनी तगोदौ करते हैं। लेकिन क्या हम ऐसी ही कोशिश और ऐसी ही दौड़ धूप आखिरत के लिए भी करते हैं कि हमें आखिरत में अच्छा घर मिले, जन्नत में हमारा महल हो, उसके लिए हमने क्या कोशिश की? तो असल कोशिश फिर क्या होनी चाहिए कि अपने रब से मुलाकात का शौक़ हो, अपने रब से मुलाकात पर शर्मिंदगी का एहसास हो कि कहीं मैं अपने आमाल की वजह से वहाँ अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदा ना हो जाऊँ, और कहीं मैं वहाँ पर हसरत और यास का शिकार ना हो जाऊँ। तो सारी दौड़ धूप किसके लिए हो? आखिरत के लिए हो, अल्लाह ताला को राज़ी और अल्लाह ताला को खुश करने के लिए हो। और सहाबे कराम इस राज को जान गए थे माशाल्लाह, उन्होंने सारी दौड़ धूप इसी के लिए की। वो दुनिया की ज़मीनों को छोड़ते चले गए, अपने घर बार छोड़े, अपना माल और दौलत सब कुछ छोड़ा, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के खातिर, सिर्फ वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी में लगे रहे। उनकी पीठें बिस्तरों से अलग होती थी, वो रातों में अल्लाह ताला के आगे झुकने वाले और दिन घोड़े की पीठों पर सवारी में गुजरते थे उनके, अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करते हुए, स्ट्रगल करते हुए, क्योंकि वो जानते थे कि जो कुछ वो दुनिया में कर रहे हैं उसका असर हमेशा बाकी रहने वाला है, उसका अजर उनको आखिरत में मिलने वाला है। तो हम गौर करें थोड़ा सा कि मेहनत तो दुनिया हासिल करने वाले भी करते हैं, वो भी थकते हैं, लेकिन रुख सही ना होने की वजह से उनकी मेहनतें सारी रायगां चली जाती हैं। तो कहीं मेरी और आपकी मेहनतें रायगा ना जाएं, इसलिए हमको अलर्ट होने की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हमें याद दहानी करवाता है, ये सूरतें जब हम पढ़ते हैं तो हमें ख़ुद एहसास होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, और एक लम्हे के लिए हम अपना मुहासबा करने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम भी अपने रुख को सही समत में ले जाएँ। तो अक्लमंद है वो शख्स जो लंबी उम्मीदें ना बांधे और अपनी आखिरत के लिए कोशिश करे, सिर्फ ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में ना रहे कि अच्छा आखिरत तो मेरे लिए पक्की है और मैं तो कामयाब हो जाऊँगा क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। नहीं, वो आखिरत के लिए कोशिश करता है, जद्दोजहद करता है, उसके लिए मेहनत करता है, तो फिर ज़िंदगी की शाम कहाँ इख्तिताम को पहुँचे किसी को ख़बर नहीं। मुझे और आपको इसके लिए कोशिश करते रहनी चाहिए और कोशिश को तेज़ कर देना चाहिए, क्योंकि कब हमारी सांस आखिरी हो हमें ख़ुद भी इसका पता नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा नाम आमल हमारे दाएं हाथ में मिले, जैसे कि आयत नंबर 7 में कहा गया कि फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फसौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा, आयत नंबर 8, कि कामयाब लोग कौन होंगे वहाँ पर, कौन लोग वहाँ पर अल्लाह के नज़दीक कामयाब करार पाएंगे। ये मेरा और आपका नुक्ता नज़र नहीं होगा कि दुनिया में एक बंगला और गाड़ी मिल जाए तो हम समझते हैं कामयाब है, बल्कि अल्लाह ताला के नज़दीक कौन कामयाब होंगे कि बस लेकिन जो शख्स के दिया गया वो अपना आमाल नामा अपने दाएं हाथ में, तो अनकरीब उससे हिसाब लिया जाएगा आसान। और एक और तर्जुमा है कि जिसका नाम आमाल उसके दाएं हाथ में दिया गया तो उससे जल्द ही आसान सा हिसाब लिया जाएगा। सुभानअल्लाह, कितने खुशकस्मत होंगे वो लोग जिनका नाम आमाल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा। ये कौन लोग थे जिनकी सारी तगोदौ ज़मीन पर सिर्फ अल्लाह की खातिर थी, जिन्होंने दाएं हाथ वाले काम किए थे? इसीलिए मुफस्सरीन लिखते हैं कि ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया में हमेशा पाकीज़ा काम किए, तैयब काम किए, दाएं हाथ वाले काम किए। और देखें, दाएं हाथ को पसंदीदा कहा गया है क्योंकि ऐसे काम करना जो इंसान को कामयाबी की तरफ पहुँचा दे। और वही वाली बात है कि दाएं हाथ वाले काम कब कर सकता है इंसान, जब उसको ये मालूम हो कि मुझे हिसाब देना है, मुझे एक दिन अल्लाह ताला के आगे खड़े होकर हिसाब देना है और मेरी ज़िंदगी लम्हा व लम्हा गुजरती जा रही है और एक दिन मैं अपनी ज़िंदगी का आखिरी सफ़ा पलटूंगा और वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। अब मेरा आमाल नामा और उसका दफ्तर बंद हो जाएगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इंसान की ज़िंदगी गुजरती जा रही है, हम नहीं जानते कि कहाँ हमारी ज़िंदगी की शाम हो जाए। जैसे गालिब ने कहा था ना कि रोमे है रक्श उम्र कहाँ देखिए थमे, नेहात बाग पे है न पाहे रिकाब में, कि इंसान जैसे घोड़े पर जब एक बार सवार हो जाता है और सरपट दौड़ता हुआ घोड़ा उसे लिए दौड़ता रहता है और कहीं रुकता नहीं है, तो ऐसी हमारी ज़िंदगी बस समझे गुजरती जा रही है और ना हमारे हाथ में वो घोड़े को खींचने वाली लगाम है और ना ही हमारे पैर रिकाब पर हैं, जो घोड़े पर जब हम बैठते हैं तो नीचे सवारी पर जो पहले सवार हुआ करते थे पैर रखने की जगह होती थी ताकि पैर उसमें फंस जाए और वो घोड़े की पीठ से गिर ना सकें। तो हम तो नहीं जानते कि कहाँ हमारी ज़िंदगी की शाम होने वाली है और कहाँ हम गिर जाएंगे, कहाँ हमें मौत आएगी। तो रब से मुलाकात इंसान को दरअसल बहुत कॉन्शियस बना देती है, वो हर कदम पर फूंक फूंक कर रखता है, तकवा वाली ज़िंदगी गुजारता है और आखिरत की फ़िक्र उसे लाहक हो जाती है। वो बेफिक्री वाली ज़िंदगी नहीं गुजारता, बल्कि वो हर लम्हा इस फिक्र में रहता है कि मुझसे कोई ऐसे काम ना हो जाए जो मुझे अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदा कर दे। और यहाँ जो मुलाकात की बात आई, अल्लाह ताला से मुलाकात का शौक़, और क़ुरान में ये मज़मून कई दफ़ा बयान हुआ है अलग अलग अंदाज़ में कि तुम अपने रब से मुलाकात करने वाले हो, तुम अपने रब से मिलने वाले हो। आखिरत में वो शख्स कहेगा कि मैं जानता था कि मुझे अपने रब से मिलना है। तो ये मुलाकात क्या है असल में? आप देखिए, जब हमको मालूम होता है कि जब हम किसी से मिलने जा रहे हैं तो हम उस मुलाकात के लिए पहले से तैयारी करते हैं, है ना? या हमको मालूम होता है कि कोई हमसे मिलने के लिए आ रहा है मुलाकात के लिए, तब भी हम तैयारी करते हैं। हर हाल में हम तैयारी करते हैं मुलाकात की, कहीं जाना हो किसी से मिलने तो भी तैयारी, कहीं कोई आने वाला हो तो भी तैयारी। तो क्या हम अपने रब से जब मुलाकात के लिए जाएंगे तो क्या उसके लिए हमारी तैयारी नहीं होनी चाहिए? और इसीलिए इतनी प्यारी दुआ है जो हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। बहुत तवील दुआ है, लेकिन इसमें जो अल्फाज हैं, जो स्पेशली मुलाकात वाले अल्फाज हैं, कि ए अल्लाह ताला, व असलुक लज़्ज़त नज़्र इला वजहक व शौक़ इला लिक़ाइक फ़ी ग़ैरि दर्रा मुदर्रा वला फ़ितनत मुदिल्ला अल्लाहुम्मा ज़य्यिन बिज़ीनत अल-ईमानि वज़अलना हुदाता मुहतदीन। कि अल्लाह ताला, मैं सवाल करती हूँ तुझसे, या मैं सवाल करता हूँ तुझसे, तेरे चेहरे पर जब नज़र पड़ेगी तो उसकी जो लज्जत होगी, उस लज्जत का मैं सवाल करती हूँ। जो अल्लाह ताला के चेहरे पर नज़र डालने की वजह से जो इंसान को एक तक़वियत मिलेगी, जो उसको लज्जत हासिल होगी, जो उसको सुरूर हासिल होगा, यानी वो कहते हैं कि आँखों की ठंडक, तो उसका मैं सवाल करती हूँ। और ए अल्लाह ताला, व शौक़ इला लिक़ाइक, मैं तुझसे तेरी मुलाकात का शौक़ तलब करती हूँ, किसी तकलीफ दे या मुसीबत के, किसी ज़रर पहुँचाने वाली चीज़ के बग़ैर ही, यानी मैं कोई फितने में ना पढ़ूँ, बस मैं वैसे ही तुझसे सवाल करती हूँ कि मैं तुझसे मुलाकात करूँ, वो शौक़ मेरे दिल में पैदा कर ए अल्लाह ताला, और उसके लिए मुझे किसी फितने में ना डाल। और ये अल्लाह ताला से मुलाकात का शौक़ जिसके दिल में होता है, अल्लाह ताला भी उससे मुलाकात का शौक़ रखता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। या फिर अल्लाह ताला अपने बंदों का जिक्र, अगर बंदे उसका जिक्र करते तो अल्लाह ताला अपने बंदों का जिक्र उनसे बेहतर महफिल में और मजलिस में करता है। सुभान अल्लाह। तो कौन लोग होंगे जो अल्लाह ताला की मुलाकात का शौक़ अपने दिल में रखते होंगे? वो कौन लोग होंगे जो चाहते हैं कि उनसे अल्लाह ताला की मुलाकात हो, या अल्लाह ताला की मुलाकात उनसे हो? वो जानते होंगे कि एक दिन ये वक्त आना था, हमको अपने रब से मिलना है। और वही लोग मिलना चाहेंगे जिनके आमाल नेक होंगे, जिनके दुनिया में गुजारे हुए नेक आमाल उनको इस शौक़ की तरफ लेकर जाएंगे, जिनकी ज़िंदगियां फरमाबरदारी वाली होती हैं, जो अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारते हैं, वो अल्लाह ताला से मुलाकात का शौक़ भी रखते हैं। सुभान अल्लाह। तो फिर ऐसे लोगों के लिए आप देखें क्या होगा, जो मुलाकात का शौक़ रखते थे तो उनको उनका नाम अमल दाएं हाथ में दिया जाएगा, और ये कामयाबी की ज़मानत होगी। और ये कामयाबी की ज़मानत क्यों होगी? क्योंकि उन्होंने दुनिया में दाएं हाथ वाले काम किए होंगे, तैयब और अहसन अमल किए होंगे, और फसौफ़ा युहासब हिसाब यसीरा, उनसे बहुत ही जल्द आसान हिसाब लिया जाएगा। उनको मैदान हशर की सख्तियों और तकलीफ़ और मशक्क़त में खड़े भी नहीं रहने दिया जाएगा। उनको वो हशर का मैदान, जो कि 50,000 साल के बराबर होगा हिसाब किताब का, जब लोग इंतहाई परेशानी के हाल में होंगे, मोमिन के लिए कहा जाता है कि वो वक्त उसको ऐसा लगेगा जैसे कि बस एक अजान हुई थी और अकामत का जितना वक्त था, इतना कम वक्त उसको लगेगा। तो उनको जल्द अज जल्द उनसे आसान हिसाब लिया जाएगा। और ये जो मज़मून है, ये हमें कई दफ़ा कुरान में भी मिलता है, हदीस में भी। तो ये आसान हिसाब दरअसल क्या है कि जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा उससे उसकी बुराइयों के ताल्लुक से सवाल ही नहीं किया जाएगा कि तुमने फलां फलां बुरा काम क्यों किया था, कि तुम्हारे पास कोई उज़्र है, बल्कि उसकी ख़ताओं से दरगुजर किया जाएगा। जैसे कि हदीस से हमें पता चलता है, आयशा रदी अल्लाह अन्हा इसकी रावी हैं, जिसका नाम है अमल दाएं हाथ में दिया गया, उससे आसान हिसाब होगा। तो ये हदीस सही बुखारी की हदीस है। आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जिस शख्स से हिसाब लिया गया वो तबाह हुआ। मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला तो फरमाते कि जिसको आमाल नामा उसके दाएं हाथ में दिया गया उससे जल्द ही आसान सा हिसाब लिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महज पेशी होगी, यानी सिर्फ सामने पेश करना होगा आमाल को, उन्हें उनके आमाल बता दिए जाएंगे, और जिसके हिसाब की तहकीक शुरू हो गई वो तबाह हुआ। सही बुखारी किताब तफसीर और किताब इल्म में भी है हदीस। तो बहरहाल हमको हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते रहनी चाहिए। और वो दुआ भी हमें रसूलुल्लाह ने सिखाई है कि अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबें यसीरा, कि अल्लाह ताला मुझसे मेरा हिसाब आसान ले अल्लाह ताला, क्योंकि हम तो बहुत ही नातवां, कमज़ोर और बहुत ही थोड़े दिले बंदे हैं। इसलिए हमको अल्लाह ताला से दुआ करते रहनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारा हिसाब आसान ले। तो ये कौन लोग होंगे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने मालिक की इताअत में गुजारी थी, उससे मुलाकात के शौक़ में गुजारी, लिहाजा उसको बतौर इनाम के उसका नाम अमल दाएँ हाथ में दिया जाएगा और साथ में उसका हिसाब भी आमन होगा, हिसाब भी आसान होगा। तो अल्लाह ताला से मुलाकात का शौक़ इंसान को नेक अमल में तेज़ कर देता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि अमल की जज़ा अल्लाह ताला ही दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता। तो बहरहाल अब आप देखें कि आसान हिसाब के साथ साथ उसके लिए और क्या चीज़ें उसको प्रोवाइड की जाएगी और कितनी बड़ी खुशखबरी होगी इसकी। आयत नंबर 9 देखिए, وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, और वह खुश बखुश अपने अहले खाने की तरफ लौटेगा। सुभान अल्लाह, यानी आखरत में भी उसके ख़ानदान वाले, उसके घर वाले, उसके अहल, उसके साथी होंगे। तो जिस शख्स को नाम अमल उसके दाएं हाथ में दिया गया तो वो लौटेगा अपने अहल की तरफ हंसी खुशी। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से बनाए कि हम भी कल क़यामत के दिन खुशी खुशी अपने अहल की तरफ लौटें। यानी इसका मतलब है कि अहल व अयाल नेक थे और उनका हिसाब किताब पहले ही हो चुका था और वो ऑलरेडी जन्नत में जा चुके थे, तो अब ये शख्स भी उनके साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगा। वो खुशी खुशी अपने रिश्तेदारों के पास, अपने अहल के पास लौटेगा और उनको भी खुशी खुशी अपना आमाल नामा दिखाएगा। सुभान अल्लाह, क्यों वो अपने अहल वयाल की तरफ खुशी खुशी लौटेगा। मसरूर का लफ्ज़ आया है और ये मसरूर का लफ्ज़ आप देखिए, जब ये लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं, सुरूर उर्दू में इसी से निकला है, तो वाकई में दिल में एक सुरूर की सी कैफियत पैदा हो जाती है। इंसान का दिल खुश हो जाता है कि जब तक हम अपने प्यारों के साथ, अपने अहल वयाल के साथ, अपने खूनी रिश्तों के साथ, जो हमारे रहमी रिश्ते हैं, उनसे हम अपनी खुशी शेयर ना करें, जब तक हमें चैन और सुकून नहीं मिलता। आप कितने भी, आपके कितने भी करीबी दोस्त हों, कितने भी आपके करीबी जानने वाले हों, लेकिन एक जो अपने खूनी रिश्तों, रहमी रिश्तों से जो मोहब्बत होती है और जो एक उनसियत और अपनाइत होती है, वो आपको कहीं और नहीं मिल सकती। और उसमें अहल में सब आ जाते हैं, अहल में बीवी, बच्चे, वालिदैन सब आ जाते हैं, बल्कि बाज़ तो इससे कहते हैं कि करीबी रिश्तेदार भी सारे अहल में आ जाते हैं, जैसे अहलुल बैत कहलाते हैं। आपको मालूम है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वाले सब अहले बैत कहलाते हैं। तो क्यों ये खुश खुर्रम होगा, क्यों मसरूर मसरूर सा खुशी खुशी लौटेगा? चूँकि उसने दुनिया में फ़िक्र की थी। इसके बारे में स्कॉलर्स ने इतने अच्छे पॉइंट बताए हैं, चूँकि दुनिया में उसने अपने अहल वयाल की फ़िक्र की थी और उनकी तरबियत करता रहा, अहल वयाल को हराम और हलाल की तमीज़ सिखाई, उसके लिए मशक्क़त उठाई, लिहाजा आखरत में वो अपने अहल वयाल के साथ मसरूर होगा। इसके बारे में स्कॉलर्स लिखते हैं कि ये वो शख्स था जिसने दुनिया में मशक्क़त उठाई, दुनिया में तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजारी, दुनिया में तंगी में ज़िंदगी गुजारी, लेकिन कभी अल्लाह ताला की हदूद को फैलांगा नहीं। उसको इस बात का एहसास था कि मुझे अल्लाह ताला के सामने एक दिन जवाब देना है। अगर मैं वहाँ पर अपने अहल वयाल को आराम देना चाहता हूँ, मैं अपने साथ साथ अपने अहल वयाल को भी जन्नत में ले जाना चाहता हूँ, तो मुझे उनकी पहले दुनिया में तरबियत करनी होगी। तो अब देखिए, वालिदैन, हम सब कोई ना कोई किसी न किसी स्टेज पर, यानी वालिदैन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को ये नेमत से नवाजा है, औलाद की नेमत से। जिनको भी नवाजा है अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से, उनको अल्लाह ताला का पहली बात तो शुक्र अदा करना चाहिए। आज मुझे और आपको, हमें क्या करना है, जो अहल वयाल की तरबियत की ज़िम्मेदारी, हम पर इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी डाली गई है, हमें उस जानिब तवज्जो मबज़ूल करनी है, अपनी भी और दूसरों की भी करवानी है। क्या आज हम समझते हैं कि हम अपने बच्चों को टीवी और इंटरनेट के हवाले करके क्या हमने उनकी तरबियत का हक़ अदा कर दिया, या उनकी हमने ज़िंदगी और दुनिया और आखरत दोनों बना दी? क्या हमारे बच्चे टीवी की गोद में पलकर आखरत में कामयाब हो सकते हैं? या आज के दौर में टीवी तो ना कहें, अब तो टीवी तो बहुत पुराना ओल्ड फैशन चीज़ हो गई है, बल्कि कुछ लोग तो हंसते भी हैं, अब तो मोबाइल है। और आपने देखा होगा, अब तो स्कूल के बहाने, यानी 7 महीने से जो हालात हैं हमारे के, स्कूल्स चूँकि ऑनलाइन हो गए हैं, तो अब तो क्या सफ़ेद और क्या सियाह, क्या दिन और क्या रात, और यानी ना चाहते भी हम कितना भी कंट्रोल करना चाहें, लेकिन बच्चे इस कदर उसके आदी हो गए हैं कि वो बग़ैर इंटरनेट के उनको, या बग़ैर मोबाइल के, बग़ैर टैब के उनका गुजारा ही नहीं हो रहा है, उनके 24 घंटे उसी पर गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए और हमें सही में अपने वालिदैन होने की ज़िम्मेदारी का एहसास हमारे अंदर अल्लाह ताला पैदा करे और हम अपने बच्चों की देखभाल सही कर सकें इंशाल्लाह। तो वालिदैन होने का हक कैसे अदा हो सकता है? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पर। दुनिया में रहते हुए हमें एहसास हो कि ये वो शख्स था जिसको, जब वो अहल में सुरूर के साथ लौटेगा, तो ये वो शख्स था जिसने दुनिया में डरते हुए ज़िंदगी गुजारी थी। उसे हर लम्हा फ़िक्र लाहक थी कि उसे आखरत में अल्लाह ताला के आगे हिसाब किताब देना है। उसे ये भी फ़िक्र लाहक थी कि मैं अकेला तो जन्नत में जा नहीं सकता, मेरा दिल कैसे वहाँ लगेगा, मुझे अपने अहल अयाल की भी फ़िक्र करनी चाहिए, जो कि अल्लाह ताला ने कुरान में हमें पहले ही बता दिया कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो बचाओ अपने आप को और अहल अयाल को जहन्नम की आग से। तो उस शख्स को दुनिया में रहते हुए अपने अहल अयाल की फ़िक्र थी, वो उससे गाफिल नहीं हुआ था। उसे ये फ़िक्र दिन रात बेचैन करती रहती थी, वो मगमूम रहता था कि कल कहीं नुकसान ना उठाना पड़े। उसको ये फ़िक्र लाहक रहती थी जिसकी बिना पर वो बेचैन रहता था कि कहीं, उसको मालूम था कि यहाँ का ऐश आखरत में भारी ना पड़ जाए, दुनिया की आसाइशें कल आखरत की सज़ा का बायस ना बन जाए। उसने हलाल और हराम की तमीज़ सिखाई, ख़ुद भी उससे बचता रहा, बच्चों को भी उससे बचाता रहा, हमेशा शर की मुखालफत करता रहा, हमेशा ऐसी चीज़ों की तरफ, यानी जो ऐश पसंदी वाली और नाफरमानी वाली चीज़ें हैं, उससे वो अब ख़ुद भी बचता रहा और अपने बच्चों को भी बचाता रहा। तो बहरहाल इसी बिना पर उसका जो अंजाम होगा उसको जन्नत में अपने अहल अयाल के साथ मिला दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह करे कि जन्नत में हम सब अपने अहल अयाल के साथ हों। जब हमारे प्यारे हमारे रिश्तेदार ही नहीं होंगे, आप सोचें कि हमारा दिल कैसे लगेगा। हम तो दुनिया में, आप देखिए कि कोई एक अच्छी सी चीज़ बनती है, कोई नई चीज़ हम बनाते हैं, चाहे वो कोई स्वीट डिश हो, चाहे कोई अच्छा सा खाना हो, पकवान हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो एक्स वाई जेड, या हमारी कोई आराम की चीज़ ही हम घर में ख़रीद कर लाते हैं, कोई अच्छी क्रॉकरी हम ख़रीदते हैं, जब तक हम अपने वालदेन को या अपने बहन भाइयों को ना बता दें, हमारे दिल को सुकून नहीं आता है। हमारा दिल चाहता है कि हमारे प्यारे इसको देखें, वो जो खुशी उनको होगी उस खुशी को हम महसूस कर सकते हैं अपने प्यारों को दिखाकर। तो जन्नत की खुशी हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे अकेले अकेले? तो हमको अपने अहलो अयाल की फ़िक्र करनी होगी, हमको इस दुनिया में उनके लिए वक्त देना पड़ेगा कि हमारे अहलो अयाल आखिर किस तरफ जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या हम उनकी आखिरत को संवारने की कोशिश कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा हमें बहुत गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है। तो जिसने दुनिया में आखिरत से अब उसके अपोज़िट बताया जा रहा है कि वो शख्स जो दुनिया में बेफिक्री की ज़िंदगी गुजारता था, जिसने कोई फ़िक्र नहीं की ना अपने ख़ुद की ना अपने अहल अयाल की। आयत नंबर 10, 11, 12, 13, व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वरा ज़ुहरी फसौफ यदउ सुबूरा व यस्ला सईरा इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा। अब उसके बरखिलाफ़ ये कौन शख्स होगा? रहा वो शख्स जिसका आमाल नामा उसकी पुश्त के पीछे से दिया जाएगा, तो वह हलाकत को पुकारेगा और भड़कती हुई आग में जा पड़ेगा। अपने अहले खाना में ये बड़ा खुश था। एक और तर्जुमा देख लीजिए। और लेकिन जो शख्स के दिया गया वह अपना आमाल नामा पीछे पीठ अपनी, तो ज़रूर वो पुकारेगा हलाकत को और दाखिल होगा वह भड़कती हुई आग में। बिलाशुबा था वो दुनिया में अपने अहलो अयाल में खुश मसरूर। कितना बड़ा फ़र्क है आप देखें, दुनिया में रहते हुए अपने अहलो अयाल की फ़िक्र करना, ये चीज़ इंसान को आखरत में फ़ायदा देगी, और दुनिया में रहते हुए आखरत को फरामोश कर देना और सिर्फ ऐश और इशरत की ज़िंदगी गुजारना, सिर्फ हल्ला गुल्ला खाना पीना, बस पिकनिक पार्टीज़ या फिर आखरत से बेखौफ ज़िंदगी। आप देखिए हमारा दीन इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह हमें रहबानियत की तालीम नहीं देता है, हमें खाने पीने से भी मना नहीं किया गया। अल्लाह ताला ने कहा कि कुलू वशरबू वला तुसरफू, तुम खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो। तो ज़िंदगी का मकसद खाना पीना नहीं है, खाने पीने के साथ साथ, यानी हमको सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए खाना पीना है, लेकिन असल हमें फ़िक्र आखरत की करनी है, कोशिश आखरत की करनी है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आखरत को बिल्कुल ही भुला देते हैं और सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी में मस्त और मगन हो जाते हैं। तो ये कौन लोग होंगे जिनके बारे में कहा गया कि जिनका नाम है आमल उनको बाएं हाथ में दिया जाएगा या पीठ के पीछे से दिया जाएगा? सूरह हाक़ा में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनको उनका नाम है आमल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा, और यहाँ पर फरमाया कि पीठ के पीछे से दिया जाएगा, और ये दोनों बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं। और ये होगा कि कहा जाता है कि वो लोग अपने बदआमालियों की वजह से जान लेंगे कि उनको उनका क्या अंजाम होने वाला है, लिहाजा वो अपने हाथ पीछे कर लेंगे। तो लिहाजा उनको बाएं हाथ में उनका आमलनामा दिया जाएगा, چونکہ ان کو اپنے اعمال کا اندازہ ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں برے کام کیے تھے تو ان کے لوگوں کے سامنے ان کی رسوائی نہ ہو، لہٰذا وہ اپنے ہاتھ پیچھے کر لیں گے۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو چونکہ پیچھے چھوڑ دیا تھا، اس وجہ سے اب آخرت میں ان کو پیچھے سے دیا جا رہا ہے عمل نامہ۔ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈالا، دنیا میں اللہ کی کتاب کو چھوڑے رکھا، اس کو کوئی اہمیت نہیں دی، لہٰذا اب ان کو اس کا انجام نظر آئے گا۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں بہت اچھی بات لکھی ہے کہ دنیا میں جو لوگ مست مگن تھے، تو صرف کھانے پینے اور آخرت کی یاد سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے تھے، جن کو نہ کوئی خوف تھا، نہ ڈر تھا آخرت کا، نہ اللہ تعالیٰ سے جواب دہی کا احساس تھا، یعنی بالکل اللہ تعالیٰ سے بے خوف اور یہ عاری زندگی انہوں نے گزاری اللہ تعالیٰ کے خوف سے، پھر یہی لوگ اس دن وہاں پر تکلیف میں ہوں گے۔ اور انہوں نے اس لیے بہت اچھا لکھا ہے کہ ذالک الفرح یسیر و حزن طویل، کہ دنیا کی آسائشیں فرحتیں آسان ہیں، یعنی انسان اتنی جلد اس کی طرف لپک جاتا ہے، لپک پڑتا ہے، کیونکہ دنیا کی آسائشیں اس کو بہت اچھی لگتی ہیں، وہ عیش و عشرت پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے لیے حلال اور حرام کی تمیز بھی چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کا جو حزن و ملال ہوگا وہ بہت طویل ہوگا۔ تو یہ دنیا کی تھوڑی سی عیش پرستی کے لیے، تھوڑے وقتی فائدے کے لیے یا وقتی لذت کے لیے اپنا ہمیشہ کا نقصان کرنا یہ نادانی ہے، تو لہٰذا ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اور عمر تو دیکھیں گزرتی ہی جا رہی ہے یا گزر ہی جائے گی، اور ہم سیدھے ایک روز اپنے رب کے سامنے جا کھڑے ہوں گے، یعنی ہر انسان کی زندگی کا لمحہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، چاہے کوئی برے اعمال کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، چاہے کوئی نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، آخر کار اس کو حساب تو دینا ہی ہے اللہ تعالیٰ کے آگے۔ تو بہرحال یہ وہ شخص جس کو نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا، جب وہ اپنے اعمال دیکھے گا تو وہ بدحواس ہو جائے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے، اس نے توبہ بھی نہیں کی تھی، اپنے عمل نامے میں جو اس کو چیز دکھائی دے گی جس کی وجہ سے وہ ہر طرف سے مصیبت کا شکار ہو جائے گا، وہ موت کو پکارے گا لیکن موت نہیں آئے گی، اور دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اس کو ہر طرف سے گھیر لے گی اور عذاب پر اسے الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہم سب کو اس سے بچائے رکھے۔ کیوں، اس کا سبب کیا تھا؟ کان فی اہلہ مسرورہ، اپنے گھر والوں میں مست مگن رہتا تھا، مسرور رہتا تھا، اس کے دل میں خیال ہی نہیں آیا کہ مجھے زندگی کے بعد موت کے بعد بھی ایک زندگی گزارنی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہنا ہے، میرے برائی کا حساب کتاب لیا جائے گا، اسے یقین ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو حساب دینا ہے۔ اور چونکہ اس نے آخرت سے غافل رہ کر زندگی گزاری، لہٰذا وہاں پر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو قابل غور نقاط کیا ہے، آج کی آیتیں بہت ڈرانے والی تھیں اور موٹیویٹ بھی کرنے والی تھیں ہم کو نیک اعمال پر۔ تو غور طلب نقاط یہ ہے کہ ہم قیامت کی ہولناکی سے بچیں، قیامت کی ہولناکی کے بارے میں ہم خود بھی پڑھتے رہیں اور دوسروں کو بھی بتاتے رہیں، تاکہ ہمارے دل میں آخرت کی یاد تازہ ہو اور ہم اپنی دنیاوی زندگی کو صحیح رخ پر لے جا سکیں اور آخرت کے لیے کچھ کام کر سکیں۔ پھر دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی اسی طرح اطاعت کرے جیسے تمام مخلوق کرتی ہے، جیسے آسمان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو بجا لاتا ہے، زمین کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ بجا لاتی ہے، سمندر میں جو ہوائیں چلتی ہیں، ہر چیز، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہیں اور ایسے کام کریں جو دائیں ہاتھ والے کام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ کام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، جو طیب کام ہیں وہ کام ہم انجام دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سرخرو ہو سکیں اور شرمندگی سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، اور اللہ کرے کہ ہم واقعی میں ان آیات میں غور و فکر کرنے والے بنے، تاکہ ہماری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزرے اور آخرت کامیاب ہو۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔